मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 31 जुलाई यानी कि जुलाई का अंतिम दिन है, वर्ष है 2017 और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का पूरे जोश खरोश के साथ हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं कुछ अलग ही तरह के विषय पर बात करने जा रहा हूं और इस विषय का संबंध एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि इमोशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने से संबंधित है। दरअसल फ्रेंड्स, बात यह हुई कि शायद फ्राइडे की ही बात है, जब मैं मेल पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक मेल थोड़ा सा इस तरह का मिला जिसने मुझे कुछ समय के लिए विचलित कर दिया। और वह मेल हमारी क्लास के एक स्टूडेंट का था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी माँ अचानक नहीं रही है और उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान है। और उसमें उसने यह भी लिखा था कि मेरी माँ मुझे इनफैक्ट एक सिविल सर्वेंट के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन चूंकि अब वो नहीं रही तो मैं सोच रहा हूं कि अब सिविल सर्वेंट बनने से भी क्या होगा, तो मैं अब इसी तरह के विचारों से ग्रस्त हो गया हूं। मित्रों, यह उनका मेल था और निश्चित रूप से इस मेल ने अंदर से थोड़ी देर के लिए मुझे हिला दिया, थोड़ा सा विचलित भी किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी मेल को आधार बनाकर मंडे को आप लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उनकी मां के प्रति आप सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। और उस स्टूडेंट से कहता हूं कि पूरा जो तुम्हारा बैच है, पूरी एकेडमी फॉर जो एक्सीलेंस है, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ जरूर नहीं रही है, लेकिन यह मानकर चलो कि और बहुत सी माताएं हैं, बहन हैं, भाई हैं जो तुम्हारे साथ हैं। और चूंकि जीवन की यह एक प्रक्रिया ही है कि एक स्टेज के बाद हर को जाना होता है, फर्क इतना ही होता है कि जब कोई अपनी पूरी पारी खेल कर जाता है तो उतना अफसोस नहीं होता, खालीपन तो तब भी आता ही है। हाँ, जब कोई असमय चला जाता है तो डेफिनेटली वह दुख ज्यादा गहरा होता है, हम सब उस दुख को समझ सकते हैं, लेकिन सच पूछिए तो इसके सिवाय हमारे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं रह जाता कि पूरे धैर्य शक्ति के साथ इसका सामना हम करें, क्योंकि जीवन तो उनके लिए उनके सामने होता ही है जो अभी गए नहीं हैं, जो अभी प्रतीक्षा सूची में हैं और हम सब उसी वेटिंग लिस्ट में अभी शामिल हैं। मित्रों, आइए इसी को आधार बनाकर हम थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, जो मोटिवेशन का जहां तक सवाल होता है, देखिए मोटिवेशन को किसी के होने न होने की ज्यादा दरकार नहीं होती है, और खासकर अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम भारतीय दर्शन या हमारी जो परंपरा रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, उसके आधार पर थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ समय के बाद हमारे यहां श्राद्ध पक्ष शुरू होगा। 15 दिन तक हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे पिता अगर नहीं है तो, दादा अगर नहीं है तो, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं जो अब इस धरती पर नहीं है, इस मृत शरीर को छोड़ चुके हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर नहीं गए हैं। वो कहीं हैं, स्वर्ग में हैं या जिस रूप में जहां भी हैं वो हैं और वो हमें देख रहे हैं। उनकी पूरी क्रियाएं वही हैं जो हम कर रहे हैं, तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए या उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एक 15 दिनों तक आयोजन करते हैं, आप लोगों को मालूम है। और जो उनकी मृत्यु तिथि होती है उसी तिथि को हम पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं या अपनी अपनी परंपरा है उस हिसाब से उसका आयोजन करके हम उनके प्रति अपना तर्पण देते हैं, यानी कि ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो हम पर प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यही पितृपक्ष का पूरा उद्देश्य है, पूरी की पूरी अवधारणा है। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि हम ये मानकर चलते हैं, जो गीता में कहा भी गया है, कि यह जो शरीर है यह मरता है, आत्मा मरती नहीं है। इसी को कृष्ण ने अपनी भाषा में कहा कि जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी जो आत्मा है वह इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बड़े सरल शब्दों में कृष्ण ने समझाया। मुझे लगता है दोस्तों कि चलिए तर्क की बात अलग है, विज्ञान की बात अलग है, हम माने ना माने, लेकिन जीवन को सुकून के साथ जीने के लिए यह सिद्धांत बहुत काम का है। यानी कि हम कभी अपने को अकेला महसूस करते ही नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, जो हमें छोड़कर गए हैं वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं क्योंकि वो हमें देख रहे हैं। और जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम हमारी वह मदद करते हैं। और सच पूछे तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब हम उनके द्वारा दी गई मदद, दिए गए विवेक, दिए गई सलाह, दिखाए गए रास्ते को महसूस भी करते हैं। और मैं यह बात कह सकता हूं कि ऐसे लोगों में मैं स्वयं भी एक हूं। तो दोस्तों, अगर हम इस तथ्य को मानकर चलते हैं तो सीधी सी बात है कि मां गई नहीं है, शरीर से चली गई है, लेकिन अभी भी वो कहीं है, वो देख रही है, वो हमारी चिंता कर रही है, वो अपने बेटे की चिंता करेंगे, उसके प्रति हमेशा शुभ भावनाएं रखेंगे। ये बात अलग है कि अब उस तरीके से वो भोजन पकाकर अपने हाथ से अपने बेटे को परोस नहीं सकती, लेकिन आशीर्वाद तो दे सकती है। और सच पूछे तो अब उनकी जो शक्ति है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मित्रों, फिर मुझे ये लगता है कि अगर हम ये मानकर चलते हैं कि मां गई नहीं है क्योंकि वो जा ही नहीं सकती हमारे दर्शन के हिसाब से, तो उनकी वो जो इच्छा थी कि मुझे अपने बेटे को इस रूप में देखना है, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद ये दायित्व और ज्यादा बढ़ गया है और अब मेरे अंदर और ज्यादा जोश खरोश होना चाहिए कि मैं अपने मृत मां की इस अधूरी इच्छा को पूरा करके दिखाऊंगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, वो संतोष का भाव महसूस कर सकें। और उस समय हो सकता है कि वो जब होती तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक थोड़ी बहुत मदद कर दी, उन्होंने भोजन बना दिया ताकि बेटे को तकलीफ न हो, ये सारी चीजें वो करती। जब बेटा निराश होता तो उसे सांत्वना देती कि बेटा निराश नहीं, ऐसे ही होता है, हिम्मत मत खो, लगे रहो। लेकिन अब तो वो शक्ति प्रदान करेंगी क्योंकि अब उनमें वो शक्ति आ गई है। पहले वो शक्ति दाता नहीं थी, वो खुद शक्ति मांगने वालों में थी, अब वो शक्ति दाता हैं। और मुझे लगता है कि अब उनका नया रहना मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। और मित्रों, हम नहीं जानते कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें हमारे जीवन का निर्देशन करती रहती हैं। जब हम बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं तब पता लगता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, सोचने पर पता लगता है, अदरवाइज तो यही लगता है कि मैं कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने बहुत की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, बहुत की बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत के इंटरव्यूज पढ़े हैं, उन्हें सुना भी है। मैं सुनकर दंग रह जाता हूं कि किस तरीके से शशि कपूर बताते हैं कि पिताजी ये कहा करते थे और मैं वही करने लगा। राज कपूर बताते हैं कि वो कहा करते थे कि इस तरह की फिल्में बनाओ तो मैं उसी तरह की फिल्में बनाने लगा। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में ही यूं ही कह दी गई बात किसी के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकती है। मतलब मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं, लेकिन खुशी से रोमांचित भी हो जाता हूं कि व्यक्ति में यह क्षमता है कि पता नहीं कौन सी बात उसे कहां छू जाए और वह उसके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बन जाए, वो एक तरीके से रॉकेट बन जाए, प्रक्षेपण यान बन जाए। मित्रों, में एक छोटी सी घटना, चूंकि बात इस तरह की चल रही है और मुझे लगता है कि शायद आपको ज्यादा यकीन कर सकेंगे अगर मैं अपनी एक छोटे से अपने अनुभव को आपसे शेयर करूं, तो मैं थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं जब 7 या 8 साल का रहा हूंगा तभी मेरे पिता नहीं रहे थे। मुझे अपने पिता के बारे में ज्यादा स्मृति नहीं है क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे और मेरे पिता गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था, कोयले की खदानें थी वहां, विश्रामपुर उस समय सरगुजा जिला हुआ करता था, छत्तीसगढ़ में यह, वहां उनकी जनरल स्टोर की दुकान थी, ज्यादातर वो वहां रहा करते थे, बीच बीच में आते थे। तो मुझे एक घटना याद आ रही है कि हम लोग वो बैठे हुए थे और बैठ करके मुझे तीसरी के किताब से भूगोल का लेसन पढ़ा रहे थे, भूगोल का अध्याय या लिटरेचर का कुछ पढ़ा रहे थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, वो भी स्मृति काफी धुंधली सी है। उन्होंने एक बात कही थी कि वो बात बात में लाल बहादुर शास्त्री की बहुत प्रशंसा किया करते थे, और अर्जुन जो महाभारत के पात्र रहे उसके बहुत बड़े मुरीद थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने कहा नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि नहीं उन्होंने कहा था, क्योंकि उसने मेरे जीवन का दिग्दर्शन किया है, मुझे मेरे जीवन को दिशा दी है। वो ये कहा करते थे कि बेटे जिंदगी में अगर कुछ कहो कुछ बनो तो लाल बहादुर शास्त्री की तरह बनो या अर्जुन की तरह काम करो जो बिल्कुल चिड़िया की आंख को देखता है। ये बात उन्होंने कही थी। दोस्तों वो तो बहुत बड़ी बात थी कि आप शास्त्री जी की तरह बन सकते हैं या अर्जुन की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहे तो पता नहीं क्यों मेरे अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में उनकी यह बात रच बस गई कि मेरे पिता यह चाहते थे, और यदि मैं इसमें थोड़ी भी अपना योगदान दे सका, थोड़ा भी अगर मैं कुछ कर सका, तो निश्चित रूप से यह मेरे द्वारा मेरे पिता को दी गई सबसे पवित्र सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है, जो कुछ भी कर पाया हूं और अभी भी जो कुछ कर रहा हूं। इनफैक्ट सच पूछिए तो एक अगर छोटा सा काम होता है तो मैं ये समझता हूं कि मैंने अपने पिता को एक अंजलि जल की श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। आश्चर्यजनक रूप से उनके द्वारा कहा गया वह वाक्य मेरे जीवन की एक अधूरी बन गई जिस पर पूरी पृथ्वी घूम रही है। मेरे पूरे जीवन की परिक्रमा केवल उनके इस एक वाक्य पर टिकी हुई है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी बात होती है, और दुर्भाग्य से यदि किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि इतनी चर्चा करने के बाद अब जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे नाम उनका स्मरण नहीं हो पा रहा है, वो इस दुखद घटना को, नो डाउट ये बेहद दुखद घटना है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो केवल महसूस करने की बात है, कि इस बेहद दुखद घटना को वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेंगे, बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेंगे, क्योंकि जो घटना घटी है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, लेकिन भविष्य में जो घटनाएं घटेंगी उनको लेकर के उस पर तो हमारा नियंत्रण है, और चाहिए कि इस घटना को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेकर के उन्हें एक कर्म की श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।